नमस्कार भारत, 15 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूं संदीप सोनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 67 सीटों पर मतदान आज।
वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़े लीडरों में अगर आप देखें तो जाट लीडर में अजीत सिंह जी आते हैं, और अजीत सिंह पहली बार इस बार वेस्ट यूपी से निकल के उन्होंने करीब 350 सीटों पे पूरे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तो प्रतिष्ठा पूरी गांव पे लगी है।
उत्तराखंड में भी आज ही होगा मतदान।
जो भी पार्टी आती है उसने कुछ नहीं किया, उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। 16 सालों से हम तो ऐसे अर्थव्यस्त में जो था वो भी नहीं रहा, सही कोई उम्मीद नहीं पार्टियों से।
क्या भारत अंतरिक्ष में आज नया इतिहास रच पाएगा?
भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वो एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में डालने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 70 में से 69 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 जिलों की 67 सीटों पर भी आज मतदान होंगे। दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर बसपा प्रत्याशी की मौत की वजह से चुनाव स्थगित हो गए हैं और अब वहां 9 मार्च को मतदान होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को कई हफ्तों पहले ये मालूम था कि उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने रूसी राजदूत के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा है कि ट्रंप ने फ्लिन का इस्तीफा इसलिए मांगा क्योंकि फ्लिन ट्रंप का विश्वास खो चुके हैं, न कि इसलिए कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि रूसी राजदूत के साथ फ्लिन की बातचीत की रिपोर्ट के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चार्ल्स शूमर ने फ्लिन के कार्यों और इनके बारे में ट्रंप प्रशासन की जानकारियों की एक स्वतंत्र जाँच की मांग की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा,
I can't state it clearly enough. There was nothing in what General Flynn did in terms of conducting himself.
मैं साफ तौर पर यह नहीं कह सकता कि जनरल फ्लिन ने कुछ भी नहीं किया है। हालांकि सीधी बात यह है कि वे उपराष्ट्रपति और दूसरों को गुमराह कर रहे थे और वे अपनी याददाश्त पर ठीक से काबू नहीं रख पा रहे थे। शॉन स्पाइसर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि द गाम्बिया जल्द से जल्द कॉमनवेल्थ का सदस्य फिर से बने। द गाम्बिया को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद वे ब्रिटेन के ऐसे पहले विदेश मंत्री हैं जो वहां की यात्रा पर हैं। जॉनसन ने एक स्थानीय जेल दिखाए जाने के बाद इस पश्चिमी अफ्रीकी देश की न्याय प्रणाली में सुधार की मदद का वादा किया है। निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति याया जमेह के फैसले को पलटते हुए द गाम्बिया ने संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में फिर से शामिल होगा। जमेह ने 2013 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता ये कहते हुए छोड़ दी थी कि यह उपनिवेशवाद का विस्तार है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वे राष्ट्रपति से मिलने को उत्सुक हैं। अपनी जिंदगी में मैं पहली बार गाम्बिया आया हूं और बहुत उत्साहित हूं। मैं राष्ट्रपति बैरो से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। बोरिस जॉनसन के शब्द। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हत्या कर दी गई है। मलेशिया की पुलिस के मुताबिक किम जोंग नैम पर सोमवार को हमला हुआ जब वे मकाऊ जाने के लिए विमान पकड़ने वाले थे। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में उनकी मौत हो गई। इससे पहले उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्हें पीछे की तरफ से पकड़ा गया था और उनके चेहरे पर कोई तरल पदार्थ फेंका गया था। पोस्टमार्टम से मौत की वजहों का खुलासा हो पाएगा। हालांकि रिपोर्टों के मुताबिक शायद उन्हें जहर दी गई थी। अमरीकी सरकार के एक सूत्र का कहना है कि वे यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि निर्वासन में रह रहे किम जोंग नैम की हत्या उत्तर कोरिया के एजेंटों ने की है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण के मामले में भारत अब चीन को टक्कर दे रहा है। अमरीका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हवा की खराब होती गुणवत्ता के कारण हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग वक्त से पहले दम तोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर मौतें हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों PM2.5 की वजह से हुई हैं, जो अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर को जन्म दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण की वजह से मृतकों की बताई गई संख्या पिछले साल WHO की रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ न केवल रेडियो पर बल्कि bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। भारत के नक्शे पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे उत्तर प्रदेश आकार में काफी बड़ा राज्य है। लगभग 16-17 साल पहले इसका आकार और बड़ा था क्योंकि तब आज का उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश राज्य का ही हिस्सा था। अब सोचिए तब जो उत्तर प्रदेश था वो आकार और विस्तार में कितना बड़ा राज्य रहा होगा। कहाँ तो एक छोर पर बलिया बनारस और कहाँ दूसरे छोर पर केदारनाथ बद्रीनाथ और गंगोत्री। बहरहाल अब से कुछ ही देर में इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने वाला है। पहले बात उत्तराखंड की जहां विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। 70 में से 69 सीटों पर आज एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मुकाबला दो प्रमुख पार्टियों के बीच है लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ सीटों पर बागी नेताओं ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत पर दोबारा दांव लगाया है जबकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना उत्तराखंड में ताल ठोक रही है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
विधानसभा की 70 में से 69 सीटों पर ही आज वोट डाले जाएंगे। चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर BSP के प्रत्याशी का रविवार को सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था। इस सीट पर अब 9 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस और BJP के बीच जोरदार मुकाबला है। हालांकि कई सीटों पर निर्दलियों का पलड़ा भारी रह सकता है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कोठियाल।
बहुत साफ सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बागी हैं जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं उनका जिस सीट पे वो प्रभावी रूप से नजर आ रहे हैं वो उनकी संख्या पिछली बार से ज्यादा बढ़ने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है। इसका मैं एक दृष्टांत दूं तो हमारी टिहरी जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 की 6 सीटों पर निर्दलीय बिल्कुल त्रिकोणात्मक स्थिति में है।
इन चुनावों में कांग्रेस और BJP के कई दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। जैसे BJP प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अपनी अपनी सीटों पर बागी निर्दलीय उम्मीदवारों के सामने कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। यही हाल सितारगंज में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ का है। कांग्रेस की दबंग और वरिष्ठ नेता इंद्रा हरदेश भी अपनी मजबूत सीट हल्द्वानी से इस बार बहुत सहज नहीं महसूस कर रही हैं। देहरादून के कैंट विधानसभा सीट से लगातार जीतते आ रहे BJP के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर के लिए इस बार रहा कठिन है क्योंकि सामने इस बार कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना और निर्दलीय उम्मीदवार अनूप नौटियाल हैं, जिनमें नौटियाल का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इसी तरह से केदारनाथ जैसी कई सीटें हैं जहां BJP को बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल कांग्रेस का भी है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने के लिए BSP का हाथी मुस्तैद नजर आता है। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता अधिक संख्या में है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कोठियाल।
मुस्लिम मतदाता का उत्तराखंड में तो सीधा सा गणित होगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराता हुआ दिखाई देगा मुस्लिम मतदाता उसी ओर वोट करेगा। वो चाहे सपा का प्रत्याशी हो चाहे बसपा का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का प्रत्याशी हो या कोई निर्दलीय भी हो।
कुल मिलाकर लगता है कि जीत और हार का अंतर पिछली बार की तरह कम ही रहेगा। हालांकि BJP को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जुटी भीड़ से नतीजे एकतरफा उसके पक्ष में आएंगे लेकिन कांग्रेस को भी अपने इलाकाई बाहुबली यानी हरीश रावत पर पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें 5 साल शासन का मौका जरूर देगी। गढ़वाल की कुछ सीटों पर वामपंथी दलों और उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार मुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बनाएंगे। फिलहाल मतदाता खामोश है और उनका रुझान लगता है पार्टियों से ज्यादा शख्सियत की ओर ज्यादा नजर आता है।
जो युवाओं के लिए कुछ काम करेंगे, बेरोजगारी के लिए कुछ अपना साथ दिखाएंगे और नौकरी और शिक्षा हो गई और मेडिकल हो गई, इन सब चीज में जो हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे हम उनके लिए वोट करेंगे।
यहाँ हमारे इलाका तो ऐसा है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ जो भी पार्टी आती है उसने कुछ नहीं किया, उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। 16 सालों से हम तो ऐसे अस्त व्यस्त में जो था वो भी नहीं रहा, सही कोई उम्मीद नहीं इन पार्टियों से।
आज होने वाले मतदान के लिए राज्य में 10,500 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें से करीब 1200 बूथ संवेदनशील और 1500 अति संवेदनशील हैं। ये सभी संवेदनशील बूथ चारों मैदानी जिलों देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर और नैनीताल में हैं जहां बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बल और पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। 450 बूथ ऐसी जगह पर हैं जहां इस समय बर्फ पड़ी है। उत्तरकाशी और चमोली जिलों में कई मतदान स्थल ऐसे हैं जहां 10 से 24 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
आइए अब बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां कुल 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 11 फरवरी को 73 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज दूसरे चरण में 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं जहां इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी डटी हुई है और बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर मतदाताओं को लुभा रही है। उत्तर प्रदेश में आज जिन 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां के समीकरणों पर लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र ने ये रिपोर्ट भेजी है।
विधानसभा के दूसरे चरण में आज जिन 67 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 34 सीटें इस समय समाजवादी पार्टी के पास हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। पिछली बार सपा के मुकाबले 18 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी थी। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबले को BJP ने त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में BJP को इस क्षेत्र से महज 10 सीटें ही मिल सकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने बदायूं को छोड़कर इलाके की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी और BJP दोनों में ही अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण शुक्ल कहते हैं,
पहले की अपेक्षा इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जिस तरीके से हिंदू के मतदाता या अगर ओबीसीज में देखें और या इवन कुछ हद तक वैसे मायावती का वोट है, ज्यादातर माना ये जाता है कि उनका इंटैक्ट रहता है, लेकिन उसमें भी जातियां हैं और सबका अर्थ है, तो उसी लाइन पे मुसलमानों का भी मत ऊंची और नीची जाति पे काफी कुछ बटा हुआ देखने को मिला। तो अगर ये कहें कि एक तरफ किसी को मिल रहा है तो वो नहीं हो रहा है। अब इसका फायदा किसको मिलेगा इस डिवीजन का, ये देखने वाला विषय है, क्योंकि वोटर बिल्कुल साइलेंट है और डिमोनेटाइजेशन का भी अफेक्ट है और कंपेनिंग इस तरह से हुई नहीं है। कंपेनिंग में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वो पैरा बैठा रखा तो उस तरह से कंपेनिंग भी नहीं हुई और इतना टाइम भी नहीं था इन लोगों के पास, खासतौर से गठबंधन के पास तो फिर भी टाइम नहीं था।
इस चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के अलावा रुहेलखंड की कई सीटें भी आती हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां स्थानीय स्तर पर कुछ उद्योग चला करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से उनकी हालत खराब बताई जा रही है। मसलन बरेली में जरी का काम होता है तो मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए मशहूर है। स्थानीय स्तर पर ये सभी चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक मतदाता पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इनमें रामपुर से सपा नेता आजम खान और स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी शामिल हैं। इसके अलावा तिलहर से कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, BJP के विधायक दल के नेता सुरेश खन्ना और मौजूदा सरकार में मंत्री कमाल अख्तर प्रमुख नेता हैं। श्रवण शुक्ल कहते हैं कि कई नेताओं का तो राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है।
वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़े लीडरों में अगर आप देखें तो जाट लीडर में अजीत सिंह जी आते हैं और अजीत सिंह पहली बार इस बार वेस्ट यूपी से निकल के उन्होंने करीब 350 सीटों पे पूरे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तो प्रतिष्ठा पूरी गांव पे लगी है। दूसरा कांग्रेस का, क्योंकि पिछली बार 2012 में पैक्ट था RLD के साथ तो कांग्रेस ने बहुत काफी हद तक अच्छा किया था। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये कि पापा और कांग्रेस अलायंस का यहाँ पर बहुत बड़ा टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने 2012 के इलेक्शन में अच्छा किया था, तो सपा को यहाँ ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद उनकी है। ऐसा होता है कि नहीं होता ये नहीं कहा जा सकता, क्यों? क्योंकि अंडर करंट किसके फेवर में जाएगा ये नहीं मालूम है।
दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 4,70,000 मतदाता मुरादाबाद नगर सीट पर हैं। इसी सीट पर सबसे ज्यादा महिला मतदाता भी हैं, जबकि सबसे कम 2,82,000 मतदाता बिजनौर जिले की धामपुर सीट पर हैं। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से पिछले साल एक साथ 20 उपग्रह छोड़कर एक कीर्तिमान बनाया था और आज वही इसरो फिर उसी जगह से एक ही बार में 104 उपग्रह छोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण है इसरो का आज का प्रक्षेपण, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला से बात की।
भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वो एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में डालने की कोशिश कर रही है। इसके पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो रशिया का है, जिसमें उन्होंने 37 सैटेलाइट 2014 में अंतरिक्ष की कक्षा में डाले थे। तो हिंदुस्तान जो है वो 2.5 गुना सैटेलाइट ज्यादा डाल रहा है एक ही लॉन्च में, और इसमें भारत का एक बड़ा सैटेलाइट है कार्टोसैट 2 सीरीज करके, जिसका की रेजोल्यूशन बहुत उम्दा है और खासकर वो पाकिस्तान और चाइना की हॉस्टाइल एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए छोड़ा जा रहा है। 2 छोटे भारत के अपने नैनो सैटेलाइट हैं जो कि टेस्ट बेड्स हैं, और इसमें से 101 विदेशी सैटेलाइट हैं, कई देश हैं उसमें, इजराइल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, नीदरलैंड्स है, लेकिन खासकर उसमें बात यह है कि अमेरिका के ढेर सारे सैटेलाइट हैं उसमें। बड़ी अहम लॉन्च है, कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब रॉकेट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हो, तब उसमें से आप 101 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को एक के बाद एक 10 मिनट के अंदर छोड़ें, तो काम बहुत मुश्किल है।
अगर ये कार्यक्रम कामयाब होता है तो क्या भारत की अंतरिक्ष में बहुत बड़ी छलांग इसको माना जाएगा और व्यावसायिक तौर पर भी भारत एक अलग पायदान पर खड़ा होगा?
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर ये सफल प्रक्षेपण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा नया आयाम कमर्शियल तौर पे खुलने वाला है। जो अंतरिक्ष का कमर्शियल लॉन्चर का मार्केट है वो छोटे सैटेलाइट्स का कम है, बड़े सैटेलाइट्स का ज्यादा है। तो जब और कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जरूर इससे कमर्शियल उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन दुनिया की नजर इस पे जरूर है कि 104 सैटेलाइट एक ही बारी में एक ही रॉकेट में रख के किस तरह से अंतरिक्ष में भेजेगा और क्या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसमें कामयाब हो पाती है कि नहीं।
दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है?
देखिए, दुनिया की स्पेस फेयरिंग नेशन जो है वो गिनी चुनी है। रशिया के पास कैपेबिलिटी है, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, फ्रांस के पास कैपेबिलिटी है, चाइना के पास कैपेबिलिटी है, साउथ कोरिया के पास कैपेबिलिटी है, थोड़ी सी कैपेबिलिटी नॉर्थ कोरिया के पास भी है। तो गिने चुने देश जो हैं उनके पास अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट बना के अपने रॉकेट से छोड़ना और फिर उसको एप्लीकेशन करना, ये बहुत कम देशों के पास है।
ये थे विज्ञान मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला। इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-37 की उल्टी गिनती जारी है। इस वक्त सब कुछ सही रहा तो भारतीय समयानुसार सुबह 9:28 पर इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। और आपको बताते चलें, भारत में इस समय वक्त हो रहा है सुबह के 6:48। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे आप छत्तीसगढ़ में 2 आदिवासियों का लगभग 17-18 दिन के बाद भी अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया, क्या है इसकी वजह और क्या है ये पूरा मामला। लेकिन पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या कह रहे हैं। अमर शर्मा स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हैं, कई अखबार मैं देख रहा हूं उनके हाथ में हैं।
जी संदीप, शशिकला, कल भी अखबारों में पहली खबर थी और आज भी वो अखबारों के पहले पन्ने में पहली खबर है। द हिंदू की हेडलाइन है, शशिकला सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड शशिकला बिड टू बिकम CM, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। जनसत्ता की भी हेडलाइन यही है कि शशिकला का सत्ता स्वप्न टूटा। आप इंडियन एक्सप्रेस की भी यही हेडलाइन है और दैनिक भास्कर ने बहुत विस्तार से इस खबर पर उसके सभी पक्षों को दिया है कि 21 साल बाद फैसला आया है और अब तय हुआ है कि अम्मा और चिनम्मा, मतलब कि जयललिता और शशिकला, इन दोनों की संपत्ति जो हाईकोर्ट ने बताई थी जैसे कि 8.12% सिर्फ ज़्यादा थी, लेकिन वो नहीं है। और जो ट्रायल कोर्ट ने जो कहा था कि इनकी संपत्ति 541% ज़्यादा है, तो उसी फैसले को इन्होंने, उसी आकलन को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जिसकी वजह से शशिकला को 4 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, जेल की सज़ा सुनाई गई और 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उसके बाद मतलब अगले 10 सालों तक वो मुख्यमंत्री बनने का उनका जो स्वप्न था वो टूट चुका है। दूसरी खबर है दिल्ली के लिए, जो बहुत हर साल यहाँ के बच्चों के भविष्य को धुकधुकी रहती है माँ बाप के मन में,
नर्सरी की बात कर रहे हैं।
जी नर्सरी दाखिला, ये हर अखबारों ने इसे पहले पन्ने में अपनी दूसरी खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि नेबरहुड, ये जो नेबरहुड क्राइटेरिया है बच्चों के एडमिशन का,
जो पड़ोस में रहने वाले बच्चे,
पड़ोस में जो दिल्ली सरकार ने
स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चे,
जी जी जी, दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया है कि जिससे आप कि लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पर रोक लगा दी गई अंतरिम आदेश।
अमर, आपने एक बात गौर की होगी कि ये जो नर्सरी में दाखिले को लेकर जो समस्या की खबरें होती हैं वो हर साल दिल्ली को लेकर ही आती हैं, इस तरह की खबरें कभी मुंबई या हैदराबाद या चेन्नई या कोलकाता, इसके संबंध में ऐसी खबरें आमतौर पर पढ़ने को नहीं मिलती हैं।
जी, अब तक ये कानूनी एक नीति बन जानी चाहिए थी जो अब तक नहीं बन पाई है, और सरकार हर साल लेकर आती है, और वो प्राइवेट निजी स्कूल है, जो 298 निजी स्कूल है जो सरकारी ज़मीन पर जिन्होंने स्कूल बनाया है, वो हर साल अपने छूट चाहते हैं वो दाखिला देने में। और हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि सिर्फ स्कूल से जो एक मैप है, मतलब मानचित्र में जो बच्चा जहाँ रहता है स्कूल से कितनी दूरी पर रहता है, सिर्फ इसके आधार पर उसका वो उसके अधिकार उसका नहीं छीना जा सकता है कि उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिले। एक दूसरी खबर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि भाजपा नेताओं पर पद दुरुपयोग कर धन कमाने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कल एक वीडियो जारी किया है और जिसमें दिखाया गया है कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, ये इन पर इनकी बातचीत है कि 1,000 करोड़ रुपए के लेन देन की ये बात कर रहे हैं, और इन्होंने सुरजेवाला ने मोदी जी से आग्रह किया है कि ईमानदारी का ये दावा करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए। जैसा कि मैंने समाचार पत्रों की समीक्षा से पहले जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ में 2 आदिवासियों का लगभग 17-18 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। क्या है इसकी वजह और क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक पुतुल।
पिछले महीने की 29 तारीख को दंतेवाड़ा जिले के गुमपुर गांव के रहने वाले भीमा करती और उनकी नाबालिग साली सुखमती को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। पुलिस का दावा था कि दोनों ही माओवादी संगठनों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मृतकों के परिजनों और आदिवासी नेता सोनी सोरेन ने आरोप लगाया है कि बाजार से लौट रहे भीमा और सुखमती को पुलिस रास्ते से उठा ले गई और अगले दिन उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। हालत यह है कि 16 दिनों के बाद भी गांव वालों ने दोनों शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया है और उनकी मांग है कि पूरे मामले की जांच की जाए। आदिवासी नेता सोनी सोरी के अनुसार दोनों का माओवादियों से कोई लेना देना नहीं था।
देखिए, जो 28 जनवरी को जो हुआ सुखमती और बीमा करती को लेके जो एनकाउंटर बताई पुलिस, वो फर्जी एनकाउंटर है। बीमा का जो कुछ भी सामान है, जैसे एक व्यक्ति मरने के बाद उसके जो यूज करने का सामान फेंक दिया जाता है या जला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे सामान आज भी जैसे के तैसी है, और सुखमती के यहाँ वैसे अभी भी उस गांव के लोग उसको अंतिम संस्कार करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं और लोग नहीं कर रहे हैं।
सोनी सोरी का कहना है कि दोनों ही आदिवासियों के शरीर के कई अंग गायब हैं और गांव वाले चाहते हैं कि दोनों का फिर से पोस्टमार्टम हो,
बिना मतलब आग का, बिना उसके किडनी का, क्योंकि हमने डेथ बॉडी का जहाँ पर रखा गया वहाँ से हमने पूरे कपड़े को निकाल के देखे हैं, तो सुखमती के आंखें नहीं है और बीमा का भी आंख नहीं है। डेथ बॉडी रखी हुई है और पड़ी है और वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक बहुत ही ज्यादा जनता आक्रोश में।
मानवाधिकार संगठन PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस बस्तर में लगातार फर्जी मुठभेड़ कर रही है।
इस बात का भरोसा भी नहीं होता है कि भारतीय सेना या भारतीय फोर्स अपने देश के आदिवासियों के साथ ऐसा भी कर सकती। अभी 2-3 महीने पहले बगरम में 2 छात्रों को उन्हें मारा, तो उनके लाश सौंपने के पहले उनकी बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल छिड़क दिया गया कि पूरे बेड बॉडी में पूरी तरह कीड़े पड़ गए और उन्हें पहचानना मुश्किल था। शायद सोचते होंगे यदि कानून मजबूर करता है पोस्टमार्टम के लिए तो ये पता ही नहीं पड़ेगा उसकी मौत कैसे हुई।
डॉक्टर लाखन सिंह का कहना है कि उनका संगठन पूरे मामले को अदालत में ले जाएगा, लेकिन बस्तर के प्रभारी IG पुलिस सुंदरराज पी ने BBC से बातचीत में सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि अगर इस मुठभेड़ के मामले में किसी को कोई शक है तो मामले की दंडाधिकारी जांच में वो अपना पक्ष रख सकते हैं। बस्तर में पिछले साल भर में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जब पुलिस के मुठभेड़ पर सवाल खड़े हुए हैं और मामला अदालत की देहरी तक पहुंचा है। भीमा करती और सुखमती के मुठभेड़ के मामले में भी अदालती कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पहले ही अदालती कार्रवाइयों के कारण मुश्किल में पड़ी बस्तर पुलिस के लिए इस मामले में भी जवाब दे पाना बहुत आसान नहीं होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
जी हाँ, आपने सही पहचाना, यह है महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य और संगीत का संगम लावणी, जिसे आपने हम सभी ने फिल्मों में, टीवी में कहीं ना कहीं जरूर देखा सुना है। रंगारंग साड़ी और साज सज्जा के साथ लावड़ी अपने देखने वाले और सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में लावणी करने वाली महिलाओं को अकेले अपना जीवन यापन करना होता है, वो शादी नहीं कर सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावणी करने वाली महिलाओं के दर्द की। इस कहानी को आप bbchindi.com पर आज विस्तार से पढ़ पाएंगे। और अब खेल की खबरें।
बीबीसी खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। मोहम्मद शामी को 16 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल पाई है। शामी अभी तक अपनी चोट से उबर नहीं पाए हैं। वहीं अमित मिश्रा और रोहित शर्मा भी चोट के चलते टीम चयन के लिए अनुपलब्ध रहे। अमित मिश्रा को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए चुना गया था, लेकिन चोट के चलते वे बाहर हो गए। तब कुलदीप यादव को जगह दी गई थी। टीम के चयन पर बीबीसी हिंदी ने बात की पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी विजय दहिया से।
बिल्कुल ठीक सिलेक्शन है। जिन लोगों का और सिलेक्शन के बारे में चर्चा हुई होगी वो अभी फिट नहीं है। मोहम्मद शामी का फिटनेस है, इस वजह से उनका नाम नहीं है और थोड़ा और समय उन्हें दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिश्रा, उनकी भी मुझे लगता है कि फिट नहीं होंगे, इसीलिए उस टीम में नहीं है। तो ये जो टीम है उस जिसने अभी टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, सेम टू सेम टीम आप कंटिन्यू करेंगे, घर पे आप खेल रहे हैं, तो बिल्कुल सही सिलेक्शन।
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट सीरीज 23 फरवरी से शुरू होगी। पहला टेस्ट 23 से 27 फरवरी तक पुणे में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में होगा, रांची में होगा तीसरा टेस्ट मैच और चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा धर्मशाला में। और अब बात हॉकी की। भारतीय टीम से बाहर चल रहे संदीप सिंह देश के दूसरे हॉकी खिलाड़ी बने हैं जिन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। इससे पहले पूर्व कप्तान और वर्तमान सांसद दिलीप टिर्की को मानद डिग्री प्रदान की गई थी। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के शीर्ष ड्रैग फ्लिकर हैं, जो चोटिल होने के कारण 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद से राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं। बीबीसी खेल समाचारों में इतना ही, नमस्कार।
इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक बार फिर मुख्य समाचार सुनने का अमर शर्मा से, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रेहड़ियों के हुजूम में गालिब किस तरह गुम हो गए हैं। एक ज़माना था जब गालिब की हवेली में बहुत बड़ी रौनक होती थी, आसपास बड़ी रंगत रहती थी, लेकिन आजकल वो इलाका ऐसा हो गया है जहाँ पर आप जाएंगे तो बस दुकानें और बड़ी तंग गलियाँ, बहुत संकरा बाज़ार। ये वो तस्वीरें हैं जो आप bbchindi.com पर इस वक्त आएंगे तो बहुत अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और कैसी लगी आपको ये तस्वीरें वो आप हमें खत लिखकर बताइएगा। और इसके साथ ही सुनते हैं मुख्य समाचार कार्यक्रम में एक बार फिर अमर शर्मा से।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 70 में से 69 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 जिलों की 67 सीटों पर भी मतदान होंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को कई हफ्तों पहले ये मालूम था कि उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने रूसी राजदूत के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि द गाम्बिया जल्द से जल्द कॉमनवेल्थ का सदस्य फिर से बने। द गाम्बिया को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद वे ब्रिटेन के ऐसे पहले विदेश मंत्री हैं जो वहाँ की यात्रा पर हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हत्या कर दी गई है। मलेशिया की पुलिस के मुताबिक किम जोंग नेम पर सोमवार को हमला हुआ जब वे मकाऊ जाने के लिए विमान पकड़ने वाले थे। एक नए अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण के मामलों में भारत अब चीन को टक्कर दे रहा है। अमरीका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हवा की खराब गुणवत्ता के कारण हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग वक्त से पहले दम तोड़ रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। शीशे के उस पार बैठे हैं स्टूडियो मैनेजर राजेश चौहान, जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी मदद कर रहे थे। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। चलते चलते आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 67 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और उत्तराखंड में भी आज ही मतदान होगा। दीजिए संदीप सोनी को विदा। नमस्कार।